तो संत की माता की बुद्धि भी कुसंग यदि पलट सकता है तो बहुत सावधान सत्संग करते करते। कह दिया कोप भवन जाए, मंथरा द्वार पर खड़ी है, यहां संध्या का समय हुआ और पूरी तैयारी हो चुकी। अब एक ही बात बाकी कि रात्रि पूरी हो जाए और सुबह हो जाए तो राम को राज तिलक हो जाए। महाराज दशरथ जी अति आनंद में डूबे, कैकई को खबर देने के लिए आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं मेरी कैकई को अचानक खबर दूंगा कि कल राम को राज मिल रहा है, वो कितनी खुश हो जाएगी। तो आए आनंद में डूबे, मंथरा खड़ी हैं। महाराज ने पूछा, मंथरी रानी कहाँ? बोले कोप भुवन में। कोप भुवन? महाराज धीरे से रुक गए। कोप भुवन? बाबा जी ने लिखा, जब कोप भुवन शब्द सुना तो अटक गए। बाबा जी लिखते हैं,
कोप भुवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भुवन सुनी सकुचे उराऊ,
जग जाहिर थी कि महाराजा दशरथ जी कैकई के प्रति ज्यादा आसक्त थे। कैकई बहुत खूबसूरत रही, पुतानी अपनी प्रिय रानी कोप भवन में। ये बात सुनते ही महाराज रुक गए, आगे कदम नहीं रख पाए। आसक्ति कितनी असर करती है, और महाराज आगे कदम न रख पाए देखते गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा और महाराज की आलोचना कर दी यहां कि इतना बड़ा महापुरुष जिसके चरणों में सम्राटों के मुकुटमणि घिस जाते थे, और जब इंद्र के दरबार में राजा जाते थे तो इंद्र अर्धा आधा सिंहासन बैठने के लिए देता था, इतना बड़ा महापुरुष आज एक रानी को भुवन में है तो सुख गई क्या? अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा बाबा जी। बाबा जी लिखते हैं, शब्द सुनते ही महाराज रुक गए। एक नारी की नाराजगी की बात सुनकर इतने बड़े सम्राट स्तब्ध हो गए। गोस्वामी जी ने आलोचना की, देखो काम प्रताप बढ़ाई, कामना की बढ़ाई तो देखो, काम बड़े बड़े को कितना अस्वस्थ बना देता है। आज महाराज में काम, कई कई कोप भुवन में यानी क्रोध, और मंथरा में लोभ। एक भवन में काम क्रोध और लोभ तीनों हाजिर हैं, यहां राम राज्य कैसे होगा? भूमिका ही नहीं बनी। देखो काम प्रताप बढ़ाई, नारी के प्रति आसक्ति थी महाराज की, ये आज उसको परेशान कर गई, आगे कदम नहीं रखा। धीरे धीरे गए और बिना बिछाना कई कई धरती पर सोई हैं। महाराज ने जाकर कई कई के शरीर पर हाथ रखकर पूछा है, के ही हे तू रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवार, के ही हे तू रानी मान सरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहार, स्पर्श करके महाराज ने पूछा, रानी तुम क्यों रिसाई? जैसे महाराज का स्पर्श हुआ तो जैसे सर्पिनी दंश देने के लिए उग्र बनकर जैसे फना लगाने की कोशिश करे, महाराज को तिरस्कृत किया, धक्का दे दिया। बाबा जी कहते हैं सर्पिनी है आज, कई कई सर्पिनी की उपमा भरत की माता को दे दी। सर्पिनी का स्वभाव है जब वो भूखी होती है तब अपने अंडे खाने लगती है, आज अपने संतान का वो करने लगी इसलिए सर्पिणी की उपमा दे दी। कोई भी कारण दो वरदान मांगना, वो उसकी जबान है, जीभ है, महाराज के मर्म स्थान को ढूंढ रही है और महाराज को धक्का दिया, उसमें भी महाराज को लगा कि ये तो काम कटाक्ष। भूपति नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक देख, पति भव के ही हे तू रानी रिसानी परसत पानी पति ही ने मार के कई कई ने धक्का दे दिया, उसमें भी महाराज दशरथ जी ने काम कौतुक दिखाई दिया। अब राम राज्य कैसे हो, जिसके घर चार बेटे ब्याह कर बैठे हैं, पुत्र वधु एक घर में हैं, जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, चार पुत्र वधु घर में, और इतना बड़ी उम्र वाला पिता अपनी रानी में काम कौतुक देखे, वो कहाँ तक भद्र लगता। एक पुत्र बहु घर बहु हो, मैंने कल भी कहा, तो माता पिता को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। यहाँ चार पुत्र वधु ये घर में बैठी हैं, बाल सफेद हो चुके हैं और फिर भी वो काम कौतुक देखे जा रहे हैं। जहाँ इतनी उम्र में भी काम कौतुक की बात हो वहाँ राम राज्य कभी नहीं हो सकता। महाराज कितने आसक्त रहे हैं और ये आसक्ति का प्रमाण आगे लिखा गया, बहुत बोले महाराज, आप उनके शब्द लीजिए। बार बार कह राउ सुमुखी सुलो चलि पिक बयने कारण मोहि सुना गजगामिनी निज को पत। बार बार कई कई को कहे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बयनी, हे गजगामिनी, देखिए कितने आसक्ति है। हा? बाल सफेद हो जाए, घर में पुत्र वधू ये हो और वडील अपनी पत्नी को कहें हे गजगामिनी, कैसा लगेगा? शोभास्पद लगता है? पूरा मकान शर्मिंदा हो जाएगा, जड़ भी शर्मिला हो जाता है। ये बोलने की एक अवस्था होती है युवा वय में, लोग बोले ठीक है पत्नी के बारे में, सुमुखी सुलोचनी पिकबैनी, लेकिन बुढ़ापे में कोई पत्नी को कहे हे गजगामिनी तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इंसान के मानस पर जब कामना का शैतान सवार होता है तब उसको पता नहीं लगता कि मैं कौन शब्द का उच्चार कर रहा हूं। महाराज को, महाराज दोषी नहीं, उसके मानस में जो नशा चढ़ा है कामना का उसी का है। बार बार कह रही, इतने से रुके ना, कहने लगे कई कई को, तुम कहो तो रंक को राजा बना दो, तुम कहे तो राजवी को देश निष्कासित कर दो। मुझे लगता है हमारे बाबा जी गोस्वामी जी को भवन के कोने में बैठे बैठे लिखते होंगे, तो गोस्वामी जी को हंसी आ गई होगी कि महाराज कह रहे हैं रंक को राजा बना दूं और अपने बेटे के लिए घोषणा की वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे, और जाहिरात करते हैं रंक को राजा बना दूं, जिसको आसक्ति होती है वो ऐसा बोलते हैं, मैं तेरे लिए ये करूं, मैं तेरे लिए ये करूं। तुम कहो तो किसी की सर काट दो, कौन है ऐसे दोसर वाला जिन्होंने तेरे सामने अंगुली उठाई। सोचिए ये रघुवंश की भाषा नहीं, किसी को मार दूं, किसी को ये करूं, ये रघुकुल की भाषा नहीं। रघुकुल में तो समर्पण समर्पण ही होता था, लेकिन वो शैतान कामना जो मानस पर है वो ही पुलवा रही है। तेरा अनबल किसने कहा किया बता मुझे। फिर भी कई कई के वर्तन में परिवर्तन नहीं हुआ तो महाराज ने तुरंत कहा, अच्छा रानियों को ऐसी आदत होती है शुभ अवसर पर जिद करने की, चलो मैं तुम्हें खबर दे दूं, भामिनी भयउ तोर मन भावा, भामिनी तेरे मन की बात बन गई। बोले क्या, घर घर उत्सव होने लगा है, कल मैं राम को राज्याभिषेक कर रहा हूं, तुमने मुझे बार बार कहा था ना कल हमारा राम गादी पर बैठेगा, वैदेही बगल में बैठेगी, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, जल्दी करो श्रृंगार सजो। कैकई के कान में महाराज ने ये बात रखी और कहा कि मुझे पता है कैकई किसी ने मेरे पहले आपको खबर दे दी और आप जिद कर रही हैं, रानियों को आदत होती है, चलो जल्दी कपड़े बदल लो, आप गहने पहन लो और राम राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर आप मुझसे जो मांगो सो मैं दूं, तैयार करें। तो कैकई ने कहा, मांग मांग आप कई बार बोले हैं, कभी दिया है आपको तो बोलना ही है मांग मांग। महाराज हंस पड़े, तुम्हें मांगना चाहिए। बोले क्या मांगू, रणांगण में मेरे दो वरदान आपके पास अभी थाती हैं, बाकी हैं, वो भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। दशरथ जी हंस पड़े, थाती राखी न मांगे हु काऊ, बिसरी गये हु मोर भोर स्वभाव। तुम्हें मांग लेना चाहिए मेरा भोला स्वभाव, अरे दो के बदले चार मांग लो, कल राम राजा होने वाला है, चार मांग लो इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा नाटक, जल्दी करो आभूषण पहन लो और चार मांग लो। कैकई ने कहा, चार नहीं दो, हाँ मांग लो, यदि मैं तुम्हारी मांग पूरी न करूं तो मुझे राम कसम। कैकई के हाथ में काबू आ गया और महाराज ने इसी वक्त यही घोषणा की है कि मांग लो, हम रघुवंशी हैं। बाबा जी कहते हैं,
रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण
गाइए। ये विश्व प्रसिद्ध चौपाई है बाबा की, पांच मिनट में दस बार वचन तोड़ता होगा वो भी कहेगा रघुकुल रीति सदा चले। कितना लगाव है इस चौपाई, दस मिनट में बीस बार झूठ बोलेगा उसको भी ये चौपाई पसंद है, कितना कितना सत्य भरा है इस चौपाई में। इसलिए मेरे भाई बहन साफ बोलिए, साफ गाइए, हमको तो गाना ही है ना, निभाना कहा, गाने में कृपणता क्यों कर रहे हैं आप।
प्राण जाहू बरु बचनन जाहू, प्राण चली आई, रघु
और सोचिए, हम तो मानो कथा कहे क्योंकि ये जीवन बन चुका। भगवान शंकर ये कथा क्यों कहते, क्या उसको किसी से प्रमाण पत्र लेना था, फूलहार पहनना था शंकर जी को, संसारियों से कुछ लेन देन थी उसकी, फिर भी कथा कहते हैं क्यों, कि जिस कुल की ऐसी रीति है जहां प्राण चला जाए बचन ना, उसकी कथा गाई जाती है। अद्भुत है रघुकुल, अद्भुत है, ऐसा कुल विश्व में नहीं हुआ न होगा रघुकुल। आज तो दशा यह आ गई कि ये चौपाई को पलट कर गानी पड़े। सब गाइएगा मेरे साथ, और सच्चा गाने में हरकत क्यों, मैं पहले गाऊं बाद में आप गाइए।
हम कुल रीति सदा चली आई, हम कुल,
प्यार से गाइए, दिल से गाइए।
बचन जाहू बरु प्राणन जाहू,
गाइए। क्यों नहीं गाते हो आप, पकड़े गए हो इसलिए कि यह प्रमाण है कि असत्य अंदर से किसी को अच्छा नहीं लगता। समाज की कुछ व्यवस्था ऐसी है जो लोग को पाप करवा लेती है, बाकी भीतर से किसी को असत्य अच्छा नहीं, वरना तुम गाने में क्यों हरकत करते हो। यह प्रमाण है असत्य किसी को अच्छा नहीं। हा? हम असत्य बोलेंगे कोई परिस्थिति के वश होकर, लेकिन हमारा बेटा हमारे सामने बोलेगा तो हमको दुख होगा कि असत्य बोला, क्योंकि असत्य मौलिक रूप से किसी को पसंद। खुद शराब पिएगा, बेटा पिएगा तो तमाचा मारे, शराब पीना ठीक नहीं, क्योंकि वो सोचता है भीतर से सत्य को ही पकड़, वरना नहीं असत्य का आचरण हम करते। फिर भी तुम क्यों नहीं गाते, सब सत्य का ही आचरण करते। हाँ, फिर भी नहीं गाते, इसका मतलब यह है कि असत्य अच्छा नहीं। जीव का स्वभाव ही सत्य है, भीतर का मौलिक रूप ही यही।
प्राण जाहू बरु बचन जाहू, प्राण जाहू वीर बचन रघुकुल
रानी। हमारे रघुकुल की रीत है प्राण चला जाए लेकिन वचन कभी नहीं हटता। और महाराज बहुत सुंदर बोले हैं, यहाँ बहुत सुंदर ये कुछ चौपाइयां हैं, क्या बताओ। आगे बोलते हैं,
नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होगी कि कोटिक गुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा।
कई कई असत्य के समान पाप नहीं है। हम रघुवंशियों ने सूत्र के रूप में पहले से स्वीकार ली है बात कि कितने ही गुंजा एकत्रित की जाए, चलौटी एकत्रित की जाए, लेकिन वो कभी हिमालय नहीं हो सकती। कितना ही पाप जुटाया जाए असत्य के बराबर नहीं होता। रघुकुल में ये रीत थी, जब बच्चा पैदा होता था रघुकुल में और पलने में उसको पढ़ाया जाता तो रघुकुल की माता दासी को सूचना देती कि जब तक बालक के पास मैं रही तब तक तो कोई सवाल नहीं, लेकिन मैं कहीं बाहर गई और बालक पलने में जाग जाए और रोने लगे तो दासी उसको जुलाते समय और चौपाई मत गाना, यही गाना,
रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल।
यही पिलाया गया था रघुवंशियों को बचपन से।
नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं
बचपन से ही लॉरी में यही सुनाया गया। तब रघुवंश में इतने नरपुंगव मेरे भाई बहन अपने छोटे छोटे बच्चे को पलने में पौढ़ा कर रामायण की चौपाइयां और गीता के मंत्र सुना रहे। देखिए भविष्य का भारत क्या होगा। ये आज से शुरू करना पड़ेगा। आज दुख के साथ कहना होगा कि कुटुंब संस्थान विफल होती जा रही है। समाज बालक मानो छात्रालय में रहता हो ऐसे कुटुंब में रहता है। न माँ बाप को फुर्सत है संस्कार देने की, न गीता रामायण का स्वाध्याय कराने की। बालक अपने भविष्य के परचा रहा। शिक्षण संस्था विफल हो गई, शिक्षण कुछ दे नहीं पाया। वकील और डॉक्टर पैदा कर पाया, विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ पैदा नहीं कर पाया। शिक्षा और राजसत्ता तो बिल्कुल विफल हो ही चुकी है, क्या बताएं, उसके तो पास कोई अपेक्षा ही नहीं। अब धर्म संस्था कुछ बची है, वो भी पूरे रूप में तो सफल नहीं हुई, लेकिन जैसे समाज करवट बदल रहा है तब लगता है कि शायद धर्म संस्था, शायद शास्त्र संस्था सफल हो जाए। इसलिए आप अपने बच्चे को इस सिखाना कि फटे कपड़े पहन लेना बेटे, एक बार रोटी मिले तो आधी दूसरों को देकर खा लेना, लेकिन असत्य का आचरण मत करना। तुम भारतीय हो, तुम हिंदुस्तान की संतान हो, तुम्हारे माता पिता गंगा और हिमालय है, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम कोई कंगाल नहीं हो, अपने आप को भूले मत जाओ। ऐसा सिखाओ संतान। सब प्रारब्ध लेकर आया है, संपत्ति न दे पाओ संतानों को तो कोई हरकत नहीं, वो प्रारब्ध लेकर आया, लेकिन संस्कार देने में यदि पीछे रह जाओगे तो समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। भारत को 20 साल के बाद यदि ऊपर उठाना है, राष्ट्र गौरव बढ़ाना है, पूरे विश्व को संदेश देना है जैसे ये देश पहले दिया करता था, यही पुनः उजागर करना है, तो हर माँ अपने बेटे को सुलाते वक्त हनुमान चालीसा गाए, ये चौपाइयां गाए, गीता के मंत्र गाए, या तो शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितो सी संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। जैसे मदालसा अपने बच्चे को पलने में डालकर जुलाती थी और यही लॉरी सुनाती थी। लो महाराष्ट्र, आभ महाबू गैल चांद लो ने जी जी भाई ने आया बाल रे जी जी भाई ने आया। एक शिवाजी यदि पैदा नहीं होता, एक महाराणा प्रताप यदि इस देश में नहीं पैदा हुआ होता तो आज हमारे भाल में तिलक नहीं होता और कंठ में यज्ञोपवीत नहीं होती, शास्त्र की कथाएं नहीं होती। एक ऐसा महापुरुष हुआ शिवाजी, उसको दो बल मिला, एक तो माता का बल मिला और दूसरा स्वामी रामदास संत मिल गए। शिवाजी ने इतनी संस्कृति का काम किया, कैसे कहां से आया, अपनी मां ने लॉरी सुनाई थी। चांद लो ने जीजा भाई ने आया बाल रे जी जी भाई ने आया। शिवाजी ने नींद रुलावे माता जी जी बाई झूलावे, शिवाजी ने नींद रुलावे माता जी जी बाई झूलावे, हे शिवाजी ने नींद रुलावे धड़ण डूंगरा डोले, शिवाजी ने नींद रुलावे। शिवाजी ऐसा महान हुआ क्यों, कैसे, उसकी माता ने क्या किया था। गुजराती में मेघाणी का काव्य है, राष्ट्रीय शायर मेघाणी। ढीन सांभली तीलण राम लक्ष्मण नीवात रे शिवे राम लक्ष्मण नीवान, पारणे पोढ़ीन सांभली तीलण राम लक्ष्मण नीवात रे एने राम लक्ष्मण नीवान। माता जी ने मुख जे दी थी उड़ी यानी नींद ते दी थी, माता जी ने मुख जे दी माताओं की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को ऐसे तैयार करें। लॉरी से सुनाओ। माताओं को मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा बच्चा जब तक तुम्हारा दूध पीना बंद न करे तब तक तुम्हारा अपना दूध पिलाओ, उधार संस्कार आ जाएंगे जहां तहां से दूध पिलाने से। आज कितना दुर्भाग्य बचपन निकला है कि मां अपने बच्चे को अपना दूध भी ज्यादा नहीं पिलाती। तीन प्रकार का ज्ञान होता है, मस्तिष्क का, हृदय का और नाभि का। आज मस्तिष्क का ज्ञान रहा, हृदय का और नाभि का खत्म हो गया। हृदय का ज्ञान माँ देती है, जो रक्त से दूध के रूप में बालक को देती है। मनोविज्ञान तो कहता है माँ को बालक को अपना दूध पिलाना चाहिए, उसमें भी दाई ओर के भाग से ज्यादा बाई ओर का दूध पिलाना, ये मनोवैज्ञानिक नियम है। क्यों? कि बाई ओर हृदय रहता है, इसलिए हृदय की धड़कन के साथ दूध पिलाना चाहिए। कितना विश्व का बचपन कंगाल होता जा रहा जो माँ का दूध नहीं पाता है, बॉटलों से पला जाता है बालक। पिलाओ, मना नहीं करता, लेकिन जहां तक हो अपना दूध पिलाओ। बोतलों से बालक बड़ा होता है। हमारे गुजरात में लोग विनोद करते हैं कि एक बालक की माँ मर गई तो वो रोया नहीं, हंसता रहा। तो किसी ने पूछा माँ मर गई और क्यों नहीं रोया? बोले माँ मरने से वो नहीं रोएगा तो उसकी बोतल फूट जाएगी तब रोएगा, क्योंकि उधार संस्कार आया, बेकार संस्कार। भारत की माँ को चाहिए अपना दूध पिलाए।
जननी न हैया मां तापी धो कसूदी दो रंग, जननी न हैया मां।
तो भारत उठना चाहिए, इस देश को खड़ा होना चाहिए।
पहली जननी न हैया मां तो डंता को डंता पी धो कसूदी दो रंग, ना धोड़ा धावन केरी धाराए धाराए धोयो कसूंदी धोड़ा धावन केरी धाराए धाराए धोयो कसूंदी ओ राज मने लाग्यो कसूंदी।
बड़ा ये संस्कार न आ जाए जीवन में, इसलिए माताएं सावधान रहे। लॉरी ऐसी सुनाए मानस की चौपाइयों की। मैं कितने प्रमाण दूं आपको, हमारे सौराष्ट्र का एक गांव है मोरबी, जहाँ आपने सुना हो, जहाँ उनारत हुई डैम टूटने से कुछ सालों हुए, वहीं की बनी घटना है। मोरबी के ठाकुर का राजकुमार ब्राह्मणों के बालकों के साथ नदी में खेल रहा था और कच्छ में यवनों का हमला हो गया और कच्छ से कुछ मालधारी लोग अपनी पोठों लेकर ऊँट के ऊपर सामान रखकर अपनी बेटियां अपने बच्चे उसको लेकर, क्योंकि बहन बेटी की खानदानी लूटी जा रही थी यवनों के हाथ, तो स्थलांतर कर दिया। गरीब लोग दौड़ 200-300 आ रहे हैं, सब निराश थे, अपनी बेटियों को बचाना था, लाज आबरू का सवाल था, ऊपर आसमान नीचे धरती बची थी इन लोगों को हिजरत की। तो ऐसा इतिहास आया है कि जब मोरबी के बाहर से मच्छू नदी बहती है वहां से जब लोग गुजरे तो मोरबी का ठाकुर का बेटा राजकुमार करीब 5-7 साल की उम्र रही होगी, तो इस उदासीनता को देखकर, देखिए संस्कार, 7 साल का लड़का खड़ा रहा नदी के बीच में, आगे मत जाइए, कौन हो? ये मोरबी का राज्य है, मोरबी नरेश का शासन है, यहां मैं उसका इकलौता बेटा, आप उदास क्यों? बोले राजकुमार हम कच्छ के गरीब लोग हैं, हमारी बहन बेटी सलामत नहीं, इसलिए आबरू बचाने के लिए निकल चुके, कहां जाए पता नहीं। रुकियो, यहां से आगे कदम रखो तो आपको सूर्य का सौगंध, भगवान सूरज का सौगंध देकर वो 7 साल का मोरबी का राजकुमार दौड़ता चला अपने घर। मैं अभी पूछकर आता हूं, आपको निवास की व्यवस्था करवा दूं, अभी मैं आया। इतना कहकर वो दौड़ा, राजा घर में नहीं थे, बाहर गए थे, रानी घर में थी, माता उसके पास जाकर बालक ने कहा कि कुछ उदास लोग, कुछ गरीब लोग आ रहे हैं, हम उसको आश्रय दें, बीमार है, दुखी है, उसकी बहन बेटी सलामत नहीं, मैं पूछने आया। 7 साल के बेटे ने अपनी माँ को कहा कि उसको आश्रय दें, मैं पूछने आया। सुनते ही एक थपाट गाल पर लगा दी रानी ने कि धिक्कार है तुम्हें। रोने लगा बालक, मैंने कोई बुरा काम किया माँ? उदास लोगों को आश्रय देना मानवता? अनाथ को आश्रय हमारा राज्य नहीं देगा तो ये मोरबी की भूमि कलंकित हो जाएगी, मैंने कोई बुरा किया? तमाच लगाने के बाद मोरबी की रानी रोने लगी, बालक पर पुनः माँ है ना कैसे उठा लिया, रोने लगी। मां मुझे ये बता, तूने मुझे मारा क्यों? बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, फिर भी मैंने तुम्हें मारा उसमें तेरा दोष नहीं। करीब 3 साल पहले की बात है बेटा, 4-5 साल पहले की बात है, शीतला सप्तमी का दिन था, मुझे ब्राह्मण पत्नियां मजबूर करके नदी में स्नान करने ले गई। मैंने दूध पिलाकर तुम्हें पलने में सुलाया था और दासी को कहा था कि राजकुमार उठ जाए तो मेरे पास ले आना या तो मुझे बुला लेना। मैं गई स्नान को और दासी तुम्हें पलना जुला रही थी, उसमें तुम अचानक जाग गया तुम और रोने लगा, दूध पीने के लिए तड़पने लगा और मेरा आना और दासी को लगा कि क्या करे। उस वक्त दासी ने तुम्हें गोद में लेकर दासी अपना दूध तुम्हें पिला रही थी, मैंने देख लिया, दासी के हाथ से तुम्हें ले लिया और बेटा तुम्हें पता नहीं पलने की ऊपर वाली लकड़ी के साथ मैंने तुम्हें उल्टा लटकाया था और तेरे मस्तिष्क पर मैंने थपाट लगा करके दासी के सभी दूध के बूंद मैंने उल्टी करवा कर निकलवा दिया। लेकिन आज मुझे लगता है कि 1-2 बूंद रह गया होगा, वरना मेरा बेटा पूछने नहीं आता, अनाथों को घर ले आता। पूछना चाहिए कि मैं पूछ कर आऊं, उसको घर ले आना चाहिए। ये राज दरबार इस अनाथों के लिए है, उसी के बल पर हम जी रहे हैं, तुम पूछने क्यों आए। ये संस्कृति हमारे राष्ट्र की, ये अस्मिता हमारे राष्ट्र की कहां गई आज, कहां हम खड़े हैं। इसलिए मां बाप को चाहिए बालकों को ऐसा सिखा, इंसाफ की बच्चों दिखाओ चल, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की जगत से साथ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें हो कल के, और सावधान रास्ता बड़ा कठिन है चलना संभल संभल के, रास्ता बड़ा कठिन है चलना संभल संभल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा। तो रघुवंश के बालकों को यही चौपाइयां सुनाई जाती थी, नहीं असत्य सम पातक पूजा, कह कह असत्य जैसा कोई पाप नहीं। और हमने पहले से कबूल कर रखा है देवी, बाबा जी कहते हैं सत्यमूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण और स्मृतिकार ने भी गाया है सत्य मूल है। इसलिए कई कई में सत्य की घोषणा करके, रघुकुल की परंपरा का गान करके, राम की कसम खा करके तुम्हें कहता हूं, 2 के बदले 4 मांग लो, लेकिन श्रृंगार सजो। अब सब काबू कई कई के हाथ में आ चुका, कई कई श्रृंगार सजने लगी, क्योंकि अब महाराज हट नहीं सकेंगे। और श्रृंगार ऐसे करने लगी, बाबा जी ने उपमा दी, भूषण सजति बिलो कि मृग मन हूँ किराति निफंद, कि क्या होगा, रात्रि का समय है, पूरी अयोध्या में जय जयकार हो रहा है, कल कब हो कल कब हो, और किसी को पता नहीं कि कोप भुवन की 4 दीवारों के बीच में क्या घटना घटी जा रही। महाराज दशरथ जी कई कई के पास, कई कई उसके पास आई और श्रृंगार सजने के बाद वो अपनी मांग रखने के लिए तैयार। कई कई वरदान मांगती है, प्रसिद्ध चौपाई है, आइए सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत गीती। कई कई वरदान मांगने के लिए तैयार। इस शब्द पर जरा गौर करें, बाद में हम आगे बढ़ें।
देह एक बर भरत की।
अब कई कई माँ का परिचय आता है ठीक रूप में यहाँ, कि कई कई वास्तव में क्या है। स्पष्ट बात है, कई कई ने प्रथम मांग में ये कहा कि हे प्राण प्रिय, आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे और मेरे भरत को राज दे। लेकिन राज दे ऐसा शब्द नहीं लिखा है, वरना कविता में गोस्वामी जी इधर उधर करके लिख सकते थे कि शासन मेरे बेटे को मिले। मंथरा ने क्या कहा था, सुत ही राजू, राज देना, तो पुत्र के लिए राज मांग सकती थी, लेकिन राज शब्द का प्रयोग नहीं किया। देहु एक बर भरत ही टीका, टीका शब्द का प्रयोग है। टीका का अर्थ ही होता है टीका, राज तिलक ठीक है, लेकिन द्विअर्थी बात है। यहाँ कई कई माँ का सही परिचय है, यहाँ कई कई को दंडवत करना चाहिए, यहाँ कई कई को बार बार प्रणाम करें। उसने कहा मेरी प्रथम मांग है मेरे भरत को टिका दो। इसका मतलब एक ये होता कि यश राम को मिले और टीका भरत को मिले। मैं चाहती हूं मेरे राम की निंदा न हो, भरत की टीका हो। टीका यानी निंदा, कहते हैं लोग उसकी टीका हो रही, एक अर्थ में हा? टीका का अर्थ राज भी होता है, और इस अर्थ में कई कई के भीतर के भाव को यदि देखे, क्यों, जिस काम के लिए आदमी जहां जाए वहां उसको यही काम करना चाहिए, यदि ये काम के बदले दूसरा काम करेगा तो उसकी टीका होगी। हम यहां 9 दिन आपके सामने रामायण की कथा कहने आए और रामायण के बदले हम व्यापार शुरू कर देते, यहां आए हैं कथा कहने और हम दुकान खोल दें यहां कि 2 घंटे कथा चलेगी क्योंकि हमको व्यापार करना है, तो आप हमारी टीका करोगे कि आए कथा कहने और धंधा शुरू कर दिया। कई कई माँ ने सोचा मेरा राम आया है विप्रधैन सुर संत हित लीनह मनुज अवतार, विप्रो के लिए, गायों के लिए, और ये राम यदि गाड़ी पर बैठ जाएगा तो जिस काम के लिए आया है परित्राणाय साधना, जिस कारण के लिए वो आया है वो कार्य नहीं होगा और शासन भोगने लगेगा, तो कल मेरे राम की टीका होगी कि जिस काम के लिए आए थे वो तो नहीं। तो भले ही दुनिया मुझे पापी नहीं कहे, भले ही मुझे दोष दे, भले ही मुझे कोई न समझे, लेकिन राम को बन दे दूं, जिस काम के लिए आया है वहां उसको भेज दूं और भरत के लिए राज मांगूं, ताकि मेरे बेटे की टीका भले हो लेकिन मेरे राम की निंदा कभी मत हो, मेरे राघव की आलोचना कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात गौर फरमाए, बाद में मैं अब की कथा सब संक्षिप्त करने वाला हूं क्योंकि मेरे सामने मंजिल खड़ी है, दोपहर का समय परसों का दिखाई दे रहा है कि क्या करें, 9 दिन में कैसे पूरा हो, तुम लोगों ने 9 दिन क्यों रखा। मैंने दिया ही 9 दिन, तुमने तो शायद ज्यादा मांगा, कहीं किधर किधर जाना है क्या बताए, बदलते फकीरों का हम वेश गाले, जमाना ये पहले वतन ढूंढते हैं, निर नदियों ना थाऊं हमारे क्या ही ना रुकाऊं, एक काम पूरा दूसरा काम वहां पूरा तीसरा, नदी की तरह। खैर फिर भी महत्व की बातें करते जा रहा हूं और क्या करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, देहु एक बर भरत ही टीका, मेरे भरत को टीका। और इसी कारण इस महिला ने शादी करके भरत जैसे अयोध्या या तुरंत ननिहाल भेज दिया, यहां नहीं रखा। एक बड़ी चतुर महिला थी, लाख लाख नमस्कार कई कई अंबा को। कौन समझ पाया कई कई को, जहां वशिष्ठ जैसे महापुरुष ने भी उसकी आलोचना की, एक समझ पाया भगवान रामभद्र। निषाद ने कितनी आलोचना की कई कई की, वशिष्ठ जी ने भी आलोचना की, लेकिन चित्रकूट की तलेटी में जब सभा हुई और सब लोग कई कई को आलोचना करने लगे तब प्रभु रोने लगे, बस बस अब ज्यादा मत बोले, अब हद हो रही, गुरुदेव क्षमा करना, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा कि दोष देगी जननी जड़ते ही, मेरी मां को जो दोष देगा वो जड़ है। उसका क्या दोष है? देह एक बार भरत ही टीका, उसको पता था कि भरत की निंदा होगी कि कौन बेटा नहीं चाहता शासन, अपने बड़े भाई को बन दिलवाया और खुद ने शासन ले लिया, तो भले ही आलोचना मेरे बेटे की हो लेकिन मेरा राम दुनिया में उजागर होता है, जिस काम के लिए आया वही काम के लिए भेज। दूसरी बात, महाराजा दशरथ जी ने कौशल्या को नहीं सुनाई थी बात, लेकिन कैकेयी को जरूर सुनाई थी। कौशल्या को नहीं कही, कैकेयी के प्रति महाराजा दिल खोलकर सब कह देते थे, कौशल्या के प्रति वो नहीं कहते। कौशल्या भाव मूर्ति है, शायद सह न पाए इसलिए भी। तो श्रवण बालक को जब तीर मार दिया धोखे में, और श्रवण के माता पिता ने शाप दे दिया दशरथ जी को कि पुत्र विरह में तुम्हारी मौत होगी, ये बात दशरथ जी ने कैकेयी को कही थी कि मुझे ऐसा शाप लगा है पुत्र विरह में मौत होगी, तब से कैकेयी दुखी थी कि पुत्र विरह में मौत, ये तो दो रीत से हो सकती है। एक तो पुत्र की गैर मौजूदगी हो जाए और बाप मर जाए, और ये भी हो सकता है कि पुत्र के विरह में मौत हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले चार बेटे मर जाएं और उसके बाद उसके बाप की मौत हो, तो कहीं ऐसा न हो कि मेरे चार पुत्र मर जाएं और शाप के अधीन महाराज की मौत उसके बाद हो, इसलिए ऐसा विरह करवा दिया जाए कि दो को ननिहाल भेज दिया जाए और दो को वन में भेज दिया जाए, इसमें उसकी मौत हो जाए, मेरी मांग का सिंदूर चला जाए तो मुझे चिंता नहीं, लेकिन उर्विला श्रुति और मांडवी और मेरी वैदेही का सिंदूर खत्म न होना पाए, मैं विधवा हो जाऊं सह लूंगी, लेकिन मेरी चार पुत्र वधुएं कल विधवा हो जाए शायद, वो मैं नहीं देख सकती, इसलिए बड़ी अकलमंद ये मां दो को ननिहाल और दो को बन में, क्योंकि जानती थी कि राम को बन दूंगा तो लखन रहेगा ही नहीं, तुरंत जाएगा, तो ये भी कारण था। तीसरा कारण, जब महाराजा की शादी हुई थी कैकेयी के साथ, तब महाराज ने वचन दिया था कैकेयी पिता को कि मुझे पुत्र नहीं है, आपकी बेटी के साथ शादी के बाद यदि भगवान की कृपा हुई और कैकेयी से पुत्र की प्राप्ति हो तो मैं वचन देता हूँ, बाद में कोई और रानी से भी पुत्र हो गया तो मैं वचन देता हूँ गादी तुम्हारी पुत्री के पुत्र को ही मिलेगी। कैकेयी को लगा कि महाराजा ने मेरे पिता को वचन दिया है गादी मेरे बेटे को, मैं नहीं चाहती कि भरत को गादी मिले, राम को ही मिलनी चाहिए, वो बड़ा है, लेकिन मेरे पिता को मेरे पति ने ऐसा वचन दिया है, रघुवंशी वचन तोड़ देगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा करूं कि मेरे पति का वचन निभ जाए, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, दुनिया कल आलोचना न करे कि दशरथ वचन भ्रष्ट थे, मेरे पति की निंदा न हो, भले मेरे बेटे के लिए राज मांगू, भले ही दुनिया मुझे स्वार्थी कहे कि अपने बेटे के लिए सब किया, भरत के लिए भले लोग कहे मेरे लिए भले कहे, लेकिन कम से कम रघुवंश का वचन तो निभ जाए। वो नहीं जानती होगी दूध पिलाकर बड़ा किया भरत को, वो नहीं जानती होगी कि कितना ही करूं ये बेटा कभी गादी पर बैठने वाला नहीं, उसने मेरा दूध पिया, वे कोई स्वार्थी मां का बेटा नहीं, वो कैकेयी का बेटा, वो जानती थी, फिर भी सोचा कि मैं भरत के लिए ये प्रसंग खड़ा करूं तो आलोचना भरत की होगी और राम पितृ आज्ञा पालक माना जाएगा, उसके मंदिर बनेंगे, उसके आरती उतरेगी, गांव गांव उसकी कथा गाई जाएगी, इसलिए कैकेयी भरत के लिए टीका मांग रही है। टीका शब्द में हमको ऐसा लगता है कि शायद ये भाव, और बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो दे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही की। तो पहली मांग मेरे भरत को टीका में, शासन के नाम पर टीका मांग ली है, आलोचना मांग ली है, और आप रामायण जानते हैं ना, आप पढ़ते हैं अक्सर कि कैकेयी को जो करना था वो कर लिया, बाद में वो कभी बोली है रामायण में, कभी बोली बस जितना करना था कर लिया, बाद में माउंट पकड़ लिया पूरे रामचरितमानस। जिसको जो कहना सो कहो, मैं सहूंगी, अब मुझे बोलना कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जो किया वो मेरा राम जानता है। मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुरबहूं नाथ मनोरथ मोर। यहां कई कई आक्रमक नहीं दिखाई दे रहे, महाराज वचनबद्ध हो चुके और कई कई के पहले के स्वभाव के अनुकूल वो नहीं दिखाई देती। यहां बिल्कुल विनम्र है, बिल्कुल भीतर से दुखी है। एक और राम को वनवास उसको देना है यश दिलाने के लिए, भरत को भले ही टीका मिले, दूसरी ओर दुख भी होता है कि राम बन जाएगा तो हम क्या करें, वेदना भी है। इसलिए वो रोती हुई बोली है, आंख से अश्रु नहीं आने दिए इस माता ने, लेकिन भीतर से बहुत रोई और रोती हुई बोली, मांगहूं दूसर बर कर जोरी। मैं हाथ जोड़ कर मांगती हूं, क्या मतलब कि आपके दिल में दया आ जाए तो दया छोड़कर कठोर बर जाना मेरे लिए। मैं भीख मांग रही, मेरी इच्छा पूर्ण करना, मैंने जानबूझकर कदम उठाया है। और दूसरा वरदान जब मुंह से निकला है, तापस बेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम बनवा। भरत को शासन और तपस्वी का वेश लेकर उदासीन बनकर राम 14 साल के लिए वनवासी हो। सोचिए, कुभाव होता तो मंथरा की कही नहीं करती। मंथरा ने कहा था, सुत ही राज राम ही वनवास। राम को वनवास इतना ही बोलती, आजीवन वनवास कर देती, लेकिन कहा नहीं 14 साल, क्योंकि 14 साल में तो सब ठीक हो जाएगा। राम जिस कारण के लिए आए हैं, मित्र धर्म सुर संत हित लीना मनुज अवतार, वो 14 साल में सब हो जाएगा। इसलिए 14 साल की अवधि लगाई। एक संत कहता है 14 साल की अवधि इसलिए कि प्रभु प्रेरणा से मां को पता लग गया था कि रावण की उम्र 14 साल ही बाकी है। एक संत कहता है अयोध्या की जो राजगादी है उसके सोपान 14 थे, 14 सोपान पर कदम रखने के बाद वहां बैठा जाता था। हर रघुवंशी राजा तुरंत चढ़कर बैठ जाता था, इसलिए रघुवंश का राज्य हुआ, राम राज्य नहीं हुआ। राम को कैकेयी ने सोचा कि 14 साल वन में रहकर एक एक साल में सही अर्थ में राम राज्य का एक एक सोपान चढ़ा जाए। गुहराज को गले लगाने से प्रथम सोपान का आरंभ होता, राम राज्य ऐसे आएगा दिल से लगाकर बाद में दूसरा। तो 14 साल इसलिए, या तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 और अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित और अहंकार कुल मिलाकर 14, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित अहंकार इन 14 पर वन में रहकर मेरा राम काबू कर लेगा। बाद में रावण मरेगा और धाम धूम से राज तिलक होगा, सभी घटना दब जाएगी और इतना दिव्य राम राज्य जगत को मिलेगा, क्या बताए। इसलिए 14 साल कहा। कोई भी कारण लिया, लेकिन बहुत दुख के साथ मांगा होगा। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवा। राघव तपस्वी बनकर उदासीन बनकर वन में जाए 14 साल के लिए। दशरथ जी के कान में जब ये शब्द आए, सर धुनाने लगे, कैकेयी तुम क्या मांग रही हो? हां महीपति, डेले मत होइए, दरों दीवारों से यही चौपाय महाराज के कान में गुंज रही है। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस
राम बनवा।
कान पर हाथ रख देते हैं, सहा नहीं गया। क्या सोचा था, क्या हुआ? कई कई तुम बार बार राम को प्रेम करती थी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं भरत को अभी बुलाकर कुछ दिन में गादी सुप्रत करता हूं, लेकिन ये दूसरा वरदान। हाँ महाराज, अब कई कई को लगा कि मुझे कठोर बनना पड़ेगा, तो जानबूझकर नाटक किया है कठोर बनने का, क्योंकि वरना मुश्किल, कहीं मुझे मना न ले, कहीं मेरा वात्सल्य मेरी बुद्धि पर सवार न हो जाए और मैं जो करना चाहती हूं वो न कर पाऊं, शायद ऐसा न हो, इसलिए वात्सल्य को पूरा दबाया है और कठोरपन हो गए। महाराज आपको वचन निभाना चाहिए, आप रघुवंश मनी किसके बल कह रहे थे? मांग मांग, भरत आपका बेटा नहीं, ये सब ऊपर के शब्द है, आपका बेटा नहीं भरत, मैं आपकी रानी नहीं, मुझे बाजार से खरीद कर आप ले आए हैं।
भरत की रावुर पूतर होगी, आने मोल बेचारी की मोल।
मुझे खरीद कर ले आए हैं आप? इतना अंतर भरत में और राम में आपको? राम को गादी देने की बात करने आए तो आपके पैर जमी पर टिकते नहीं थे, और भरत का शासन मांगा तो अबला की तरह रोने लगे, इतना भेद। जब कैकेयी ने ये बात कही भेद, तब दशरथ जी कांप गए। कैकेयी बस सुन, फिर कभी ऐसा मत बोलना। क्या? बहुत सुंदर बोले,
मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहो मोहे संकर।
तीन नेत्र वाले का सौगंध खाकर कहता हूं, भरत और राम मेरी दो आंख है, कोई भेद नहीं। मैंने केवल राजनीति और परंपरा का निर्वाह किया कि बड़ा बेटा राजा होता है, और तेरी भी इच्छा रही, फिर भी तेरी इच्छा हो कि भरत को गादी, मैं तुरंत तैयार हूं, लेकिन दूसरा वरदान तुमने ठीक नहीं। कहीं कहीं इतना तो बताओ, राम जैसा बेटा वनवास के लायक है क्या? और तो क्या बताऊं कहीं कहीं। बहुत सुंदर बोले,
जासु सुभाव हरि अनुकूला, सो की करगी मातु प्रतिकूला। जासु सुभाव हरि अनुकूला, सो की करगी मातु प्रतिकूला। जासु सुभाव अरि अनुकूला, सोकिन करगी मातु प्रतिकूला। जासु सुभाव अरि अनुकूला,
जिसका स्वभाव दुश्मन को भी अनुकूल रहता है, वो राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कई कई सोचो, कल हम अवध को क्या मुंह दिखाएंगे? कई कई राम मेरी आंख से ओझल हो जाए, इससे पहले अच्छा है मैं हाथ जोड़कर भीख मांगू, तुम मेरी हत्या कर दो। कई कई बहुत कठोर बनी है यहां, महाराज अगला की तरफ रोए मत, या तो धर्मशील और सत्य संग कहलाना बंद करवा दे, या वरदान दे दे, दोनों एक साथ नहीं हुआ करता। मांग मांग, किसके बल कह रहे थे? दशरथ जी को जब पता लग गया, यकीन हो गया, क्योंकि कैकेयी ने कह दिया कि मुझे जादी बात अच्छी नहीं लगती, सुबह होते तुम्हारा बेटा यदि वनवास की बात पर नहीं चला राम, तो मोर मरण राउर अयश, मैं मर जाऊंगी और आपको बदनामी मिलेगी। कितना कठोर होकर ये महिला, मैं अंदाजा नहीं कर सकता, समझाने में कठिनाई होती है। कितनी कठोर, कितनी रोई होगी ये मां। उसने ये कहा कि मेरा मरण हो जाएगा और आपको बदनामी मिलेगी, और बदनामी से मौत अच्छा। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावितस्य चाकीर्ति, जो संभावित होता है, जो आबरूदार होता है, जो खानदान होता है, उसको अपमान मौत से ज्यादा अपमान खतरनाक हुआ करो। मैं मरूंगी तो आपकी आलोचना होगी कि वचन नहीं निभा सके और पत्नी मर गई, ये नहीं हुआ ये हुआ। कितना दुख के कोई महिला ऐसा नहीं सोचती, लेकिन कितनी दुख से बोली होगी कि आप यदि चले जाए तो कम से कम रघुकुल की कीर्ति तो बच जाए। मरना तो है ही एक दिन। हाँ,
कितनी कठोर होकर बोली हो, मैं मरूंगी आपको बदला नहीं मिलेगी। गर्भी की इशारा यह है, या तो मुझे मरना होगा या आपको मरना होगा, क्योंकि मैं जानती हूं भीतर से कि बिना राम आप नहीं रह सको। मैं जानती हूं, लेकिन दो ही रास्ता है, या मेरी मौत या आप। सोच लीजिए, जब महाराज ने फैसला सुना कि कई कई अपनी बात पर मक्कम है, तब गए वो नारी विश्वास, नारी पर से विश्वास उठ गया। सिद्धि पाते पाते जैसे यति को अविद्या लग जाए और सिद्धि से गिर जाए, ऐसे अवधेश की दशा हुई। रोने लगे, कई कई के कोप भवन की खिड़कियों से आकाश दिखाई दे रहा था, तो खिड़कियों के पास रोते रोते गए महाराज। कई कई को डर लगा कि क्या करेंगे, तो आकाश को देखा खिड़की से और आकाश के सामने हाथ जोड़ा और सूर्य नारायण की स्तुति की। हे सूर्य भगवान, कल उदित मत होना, कल अवध में उदित होगे तो तुम्हारी आंख में भी आंसू आ जाएंगे कि मेरे वंश में ये क्या हो रहा, मेरे कुल में क्या हो। उदित होत जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध को देखकर आपके हृदय में शूल होगा पीड़ा। अवध में लोग सोए नहीं, जान पखार बज रहे हैं, शहनाई के सूर बज रहे हैं, महाराज के सीने में तीर की तरह चुभ रहे हैं। महाराज व्यथित है, धरती पर गिर पड़े। यही है मां। अब एक और संदर्भ में देखें, उसी का नाम है मानव जीवन। सोचा होगा कभी दशरथ जी ने कि ये हालत होगी। दशरथ कौन है? ब्रह्म का पिता। जिस धरती पर हम और तुम जी रहे हैं सब, उस धरती पर ब्रह्म के पिता के मनोरथ भी सफल नहीं होते तो हम क्या रोए। यहाँ बड़े बड़े के मनोरथ चूर चूर हो चुके हैं, इसलिए राम कथा सुनने के बाद जीवन में कभी असफलता मिले, धारणा के विपरीत परिणाम आए, तो मानस के इस प्रसंग को हृदयस्थ करना। यहाँ ब्रह्म का बाप भी रोया था, हम कौन विषाद है, यहाँ सबको रोना होता है, ये जीवनी ही ऐसी है। यहाँ आंसुओं के सिवा है क्या? ये तो फंसे हैं हम लोग यार, बाकी यहाँ आंसुओं के सिवा क्या मिला है लोग। हमारे गुजराती में लिखा, जीवन ना रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए, रंग बदलते रहते हैं, यहाँ मौसम बदलती रहती है, ऋतु वर्षा विगत शरद ऋतु।